ओम शांति। टॉपिक है योग में एकाग्रता कैसे लाए, यही था ना। तो इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। तो ब्राह्मण जन्म होते हुए बाप दादा ने हमें क्या वरदान दिया, योगी भव पवित्र भव। तो योगी तो है ही हम, जब से ज्ञान में चल रहे हैं। लेकिन अभी हमें चेकिंग करनी है कि योग तो कर ही रहे, सुबह शाम अमृत वेले से लेकर रात शाम का योग और अमृत वेले का योग, लेकिन चेक ये करना है कि योग में एकाग्रता कहाँ तक आई। एक होता है कुछ विशेष टॉपिक लेके योग करना, तो और एक होता है साधारण योग, बस टाइम हो गया चलो योग करो। तो विशेष योग में कैसे होगा, जब टॉपिक लेके उस पर मनन चिंतन करते और उस टॉपिक के द्वारा एकाग्र हो जाते हैं, एक ही पॉइंट में एकाग्र हो जाते हैं, तो वो योग में एकाग्रता आती है। तो अभी अगर हम चेक करेंगे अपने अपने जो योग की एकाग्रता, तो कुछ परसेंटेज लोग ही संतुष्ट हो पाते कि हाँ आज मेरा योग अच्छा रहा, लेकिन सभी का उतना नहीं हो पाता। तो इसमें चेकिंग करने की यही है कि हमें योग में एकाग्रता बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए कुछ हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो भक्ति मार्ग में भी ये एकाग्रता के लिए बहुत सन्यासियों ने, संत महात्माओं ने रिसर्च किया, जैसे योगासन के द्वारा। योगासन में भी वृक्षासन, गरुड़ासन, बकासन आदि ये एकाग्रता करने के लिए उन्होंने, और प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम चढ़ा कर भी एकाग्रता लाने की कोशिश की। जैसे अनुलोम विलोम करते तो उसमें सांस को रोकते हैं फिर छोड़ते हैं, तो इसमें भी एकाग्रता आती है। फिर जैसे मुद्राओं के द्वारा, हस्त मुद्रा, जैसे वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा आदि मुद्राओं के द्वारा भी एकाग्रता करने की कोशिश की। फिर दिया जलाकर दिए की लौ पर मन को एकाग्र करने की कोशिश की। हाँ, और त्राटक, त्राटक साधना भी किया कि मन को या बुद्धि को एकाग्र कैसे करें। त्राटक माना दीवार पर एक बिंदी वो केरी जाती है और बिंदी पर ध्यान लगाया जाता है, और कहा जाता है कि जब तक आंसू ना आए तब तक वो साधना नहीं होती। तो ऐसे उसकी साइकिल होती है और उसका 21 दिन तक कुछ अभ्यास करते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार की योग साधनाएं भक्ति मार्ग में चली, लेकिन अभी हम ज्ञान मार्ग में योग में एकाग्रता कैसे लाए। वैसे बाबा ने तो सैकड़ों युक्तियां बताई है हर मुरली में, लेकिन अभी तक अगर हमने उस पर एकाग्रता हासिल नहीं की तो फिर चेकिंग करने की बात है। तो एकाग्रता की परिभाषा देखेंगे कि एकाग्रता क्या है, क्या बोलेंगे। एकाग्रता अर्थात एक के अंत में खो जाना और एक बिंदु पर मन को एकाग्र कर लेना। एकाग्रता एक के अंत में खो जाना, और एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि एक बाप दूसरा न कोई। इसी एक जैसे योग में बैठते हैं तो एकाग्र आ जाती है, तो बस एक के लगन में मगन हो जाते हैं, लवलीन अवस्था कहते हैं। तो उसमें व्यर्थ संकल्प नहीं आता, उसमें बुद्धि भटकती नहीं। तो अगर एकाग्र नहीं है मन, तो मन बुद्धि कहाँ भटकते। जो सेवा का जो बर्डन होता है कि आज सेवा पूरी नहीं हुई या कल सेवा का प्लान क्या करना है, उसमें बुद्धि चली जाती है। या फिर दूसरा किसी को आदत होती है कुछ नए कुछ खाने की, तो आज क्या बनाए, कुछ नया बनाए, ऐसा उस योग में ही प्लान आ जाते. तो योग तो बाहर रहा, लेकिन दूसरे अभी कर भी रहे कि हाँ योग तो कर रहे, लेकिन कैसे फिसल जाते हैं अपन योग से पता ही नहीं चलता. तो ऐसे बुद्धि भटकती रहती, एकाग्र नहीं होती. तो ऐसे समय हमें कौन सी युक्तियां लानी है उस पर हमें चिंतन करने की. तो पहली जो युक्ति है, मनन स्थिति द्वारा मगन अवस्था, योग में एकाग्रता लाने के लिए. तो मनन करते करते ही हम मगन हो जाती है. तो कोई भी एक मुरली के पॉइंट ले लो या कोई सोमान का अभ्यास ले लो, उस पर हमें मनन करना है और उसी बिंदु पर टिक जाना है. जैसे हम उदाहरण के तौर पर ज्ञान सूर्य, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, ये सोमान ले लेते हैं. तो ज्ञान सूर्य हूं तो स्थूल सूर्य को याद आएगा ही. तो स्थूल सूर्य की क्या क्या विशेषता है, जैसे स्थूल सूर्य क्या करता है, प्रकाश देता है. तो फिर मैं ज्ञान सूर्य हूं तो इसको जोड़ना है कि मैं सारे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा हूं. फिर जैसे और पालना करता है सूर्य, सजीव सृष्टि की पालना करता है ना, कि उसको कहा जाता है सृष्टि का माई बाप, सूर्य स्थूल सूर्य को. अगर सूरज नहीं है तो फिर ये सजीव सृष्टि नहीं रह सकती, ऐसा है. तो मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, सारी सृष्टि के सृष्टि का पालन करता हूं मास्टर. क्योंकि बाबा ने कई मुरलियों में कहा कि आप पूर्वज हो, पर दादे परदादे हो. तो उस हिसाब से हमें सारी सृष्टि की पालना करनी है. पालना कैसे करनी है, सूक्ष्म रूप से ज्ञान योग ज्ञान सुख शांति आनंद पवित्र गुण और शक्तियों के द्वारा. तो इस प्रकार ज्ञान सूर्य हूं, इस मनन करते करते ही मगन अवस्था आ जाती है. कि जैसे वो सूर्य ये विशेषताएं है उसमें, तो मेरे में भी क्या विशेषताएं होनी चाहिए. तो इस प्रकार है, पहले ये पॉइंट है मनन शक्ति. दूसरा है स्वस्थिति. स्वस्थिति अर्थात आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति है, जैसे बाप की भी ओरिजिनल स्थिति, जैसे ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर. तो जैसे बाप शांति का सागर है और मुझ आत्मा का भी ओरिजिनल गुण शांति है, तो ये स्वस्थिति में खो जाना है, स्वरूप बन जाना है. तो इस स्वरूप बनते ही हम इस हम खो जाएंगे, योग में खो जाएंगे, योग की एकाग्रता आ जाएगी. जैसे बाप शांति का सागर है तो मैं मास्टर शांति का सागर हूं. तो शांति बाप का जो कर्तव्य है वही बच्चों का कर्तव्य है. बाप सारे विश्व में शांति फैलाते तो मैं आत्मा भी सारे विश्व में शांति फैला रहा हूं. तो इस प्रकार शांति के गुण का अनुभव करना है. सारे विश्व की आत्माएं अशांत हो चुकी है, अशांत है, दुखी है, उनको सुख और शांति का वर्षा दिलाना है. तो ये हो गए शांति. दूसरी पॉइंट स्वस्थिति. स्वस्थिति फिर तीसरी है, स्वस्थिति हो गई. फिर बाप से सर्व संबंधों के द्वारा योग में एकाग्रता. जैसे हमने 84 जन्म लिए तो देहधारी से ही संबंध रहे, लेकिन द्वापर युग से 63 जन्म मैं और मेरा का संबंध आ गया, काके मामे चाचे सब. तो इसमें मैं और मेरापन, यह संबंधों में हम गिरते ही गए. धोखा ही खाते रहे, लेकिन अभी बाप से सर्व संबंध निभाना है तो सर्व संबंधों की अनुभूति अभी हम संगम पर ही कर सकते हैं। क्योंकि जैसे बाप टीचर सदगुरु तीन संबंध माता पिता फिर गुरु सखा भाई, तो ऐसे सर्व संबंधों की अनुभूति जैसे मुरली सुनते हैं तो हमें कौन सी स्मृति होनी चाहिए, मैं गाडली स्टूडेंट हूँ मुरली सुनते समय, तो टीचर की स्मृति से हम ये मुरली सुनते हैं तो फिर हमें नशा आता है। तो इस प्रकार ये तीसरी है सर्व संबंधों की अनुभूति। फिर आत्मसंयम चौथी पॉइंट है, आत्मसंयम योग में एकाग्रता लाने के लिए। आत्मसंयम माना मैं कर्मेंद्रियों का राजा हूं, मैं आत्मा राजा हूं, तो कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर होना चाहिए। तो इसमें जैसे बाबा दादा ने कहा है कि बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, बुरा न देखो, बुरा न सोचो, बुरा न करो, और उसमें एक मुख द्वारा तो बुरा न बोलो हो गया, लेकिन जीवा की टेस्ट है, जीवा बुरा न बुरा तो नहीं बोलेंगे लेकिन वो टेस्ट को कंट्रोल करो भोजन के ऊपर, तो ये एड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये आत्मसंयम कर सकते हैं, अपने कर्मेंद्रियों पर जीत पा सकते हैं, जीत और इसी के द्वारा योग में एकाग्रता लाई जा सकती है। फिर पांचवी पॉइंट है वसुधैव कुटुंबं कुटुंबकम की भावना, विश्व हमारा परिवार है। तो ये अगर स्मृति रहती है तो हमें याद आता है कि हमें जो प्राप्ति हुई है वो सारी विश्व को होनी चाहिए, सारी दुनिया भगवान को पुकार रही है और हम इधर भगवान को जान गए और हम नहीं कर पाए, उनको परिचय नहीं दे पा रहे या सकास नहीं दे पा रहे, तो फिर हमें ये फीलिंग आती है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी ये अगर स्मृति है सारे विश्व की जो आत्मा है उनको पाप का वर्षा मिल जाए, तो ये स्मृति में रहती है तो हमारा योग निरंतर लगा रहता है, योग टूटता नहीं और योग में एकाग्रता बनी रहती है। फिर है छठी पॉइंट है सर्व के प्रति सुभावना शुभकामना, चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो सभी के प्रति हमारे अंदर सुभावना और शुभकामना होनी चाहिए, चाहे किसी ने बुरा भी किया हो लेकिन हम ज्ञान में होने के कारण हम समझ सकते हैं कि जो भी कोई आत्मा कर रही है वो परवश कर रही है, परवश के होने के कारण वह बुरा कर रही है या कुछ बोल देते हैं, तो उनके प्रति भी हमारी शुभभावना शुभकामना होनी चाहिए। बाप दादा ने भी कहा है कि 99% उनमें कमी है लेकिन एक तो विशेषता है बाप को पहचाना, तो उनके प्रति ये शुभभावना हमें रखनी है। तो सबके प्रति शुभभावना शुभकामना रखेंगे तो दुआएं मिलती रहेंगी, और बाप दादा ने कहा है कि दुआएं दो दुआएं लो, सबके दुआओं का खाता जमा करो, संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो, तो ये इस द्वारा भी हम योग में एकाग्रता ला सकते हैं। फिर है लक्ष्य के प्रति जागरूकता सातवीं पॉइंट है, तो ये अगर जागरूकता रही तो हम योग में एकाग्रता ला सकते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, जैसे बाप समान बनना या देवी देवता बनना, जो भी लक्ष्य हम चुन लेते तो वो स्मृति में रहे कि हमें ऐसा बनना है, तो हम इसमें एकाग्र हो सकते हैं, अलबेले नहीं हो सकते, हमें नियम बना रहेगा कि नहीं योग में हम निरंतर बन के ही रहेंगे। फिर है अंतर्मुखी एकांतवासी, अंतर्मुखी सदा सुखी कहा गया है, तो अंतर्मुखता की गुह्यता में जाना है, अंतर्मुखता की यानी उसका अभ्यास करना है। जैसे सागर में देखा जाता है कि लहरें होती है, तो लहरे में अनेक संकल्प चलते हैं, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो सागर शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है। और अंदर जितना अंदर जाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, माणिक मोती हीरे पन्ने जो भी है वो मिलते हैं। तो अनेक अंतर्मुक्ता में रहेंगे तो अनेक जो ज्ञान के गुह्य रहस्य खुलेंगे और हमें वो शक्ति मिलती रहेगी, नए नए इन्वेंशन होते रहेंगे, तो हमारा मन पूरा एकाग्र हो जाएगा, बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, तो बुद्धि भटकेगी नहीं। तो इस प्रकार से हम योग में एकाग्रता ला सकते हैं। और स्मृति स्वरूप अगले ही पॉइंट है, स्मृति स्वरूप। तो स्मृति स्वरूप के द्वारा हम एकाग्र हो सकते हैं। जैसे 18 जनवरी के दिन हम स्मृति में रहते ना, पूरा एक ही बताया नहीं जाता है कि एकदम खोए रहते, उस दिन का वातावरण ही पूरा वायुमंडल ही चेंज हो जाता है, सभी किसी को बताया नहीं जाता, सब साइलेंस में रहते। तो इस प्रकार हर दिन अगर हम ऐसा करते मौन की साधना या अपने प्रति अटेंशन, तो हम इसके द्वारा भी योग में एकाग्रता ला सकते हैं। फिर है फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता स्थिति द्वारा सबसे इजी स्थिति दी योग में एकाग्रता लाने के लिए, फरिश्ते बन जाओ और उड़ते रहो। वो बनने के लिए तो फिर अपने आप पर अटेंशन देना पड़ेगा। तो बाबा बोलते हैं ना, कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, कोई भी देश में चले जाओ, चक्कर लगाओ और जहां भी दुख शांति है वहां उनको शांति दो, शक्ति दो। जहां भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, वहां चले जाओ, शक्ति दो। हॉस्पिटल में चली जाओ, रोगी को सुख शांति और साथ। तो ये परिस्थिति अगर धारण करते हैं तो एकदम निरंतर योग हो जाता है, एकाग्रता बनी रहती है। तो इजी स्थिति है फरिश्ता स्थिति योग में एकाग्रता होने के लिए। और फिर है अव्यभिचारी याद। बाप दादा अव्यभिचारी याद माना एकवर्ता, एक रस स्थिति, एक बाप दूसरा ना कोई, अनेकों की याद समेट के एक बाप की याद में रहना, तो ये होगी अव्यभिचारी याद। इस प्रकार हम योग में एकाग्रता ला सकते हैं। और किस प्रकार आप भी बताएंगे कि कौन सी विधि द्वारा एकाग्रता ला सकते हैं? मुरली के याद द्वारा, इस पर भी हम योग में एकाग्रता ला सकते हैं। हाँ, तो हम एक छोटा सा एक ड्रिल करेंगे अभी योग में एकाग्रता लाने के लिए। ओम शांति। और अभी हम यहाँ बैठे बैठे ही हम परम धाम की सैर करते हैं, और यह ध्यान रखना है कि हम नीचे नहीं आएंगे, परम धाम में ही रहेंगे, ठीक है ना? तो कोई भी नीचे नहीं आएगा, अपने मन बुद्धि को एकदम ऊपर अलर्ट रखना है, स्थूल शरीर से अलग होकर मैं आत्मा एकदम बिंदी हूं, बिंदी बन गई हूं, शरीर का भान भूलते जाना है और बिंदु बन सबको एक साथ परम धाम में उड़ना है। सब बिंदिया ऊपर परम धाम में जा रही है। परम धाम लाल सुनहरा प्रकाश, वहां हम पहुंच गए हैं और सभी हम बिंदी बिंदी स्टार मुआफिक, एक जो बड़ी बिंदी है शिव बाबा, उसके चारों तरफ चक्र लगा रहे हैं और बाप दादा से ज्ञान की किरणें मुझे आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप बन गई हूं। बाप दादा से सूखी किरणें मुझे आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा सुख स्वरूप बन रही हूं। बाप से शांति की किरणें मुझे आत्मा पर पड़ रही है और मैं शांत स्वरूप बन रही हूं। बाप दादा से आनंद की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा आनंद स्वरूप हो रही हूं। बाप दादा से शक्ति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं शक्ति स्वरूप आत्मा बन गई हूं। बाप से प्रेम की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा प्रेम स्वरूप बन गई हूं। अब मैं आत्मा बाप समान संपूर्ण बन गई हूं। सातों गुणों द्वारा मैं आत्मा संपूर्ण बन गई हूं। बाप में और मुझ आत्मा में कोई फर्क नहीं है, एकदम कंबाइंड स्वरूप बन रही हूं। अब मैं आत्मा इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा एकदम सर्वोच्च स्थिति को पा गई हूं और अब योग में एकाग्रता के साथ रमणीकता लाने के लिए कुछ और अभ्यास करेंगे। वर्तमान समय को जोड़कर जैसे अभी श्रावण मास चल रहा है तो भक्त लोग बहुत शिव को याद कर रहे हैं मंदिरों में, और कई भक्त तो चल चल कर शिव प्रतिमा पर जल चढ़ाने के लिए बहुत दूर दूर से यात्राएं कर रहे हैं। तो मैं आत्मा परमधाम में कंबाइंड हूं और बाप दादा भी कह रहे कि जैसे कोई बच्चा जिम्मेवारी संभालने के लिए तैयार हो जाता है तो बाप उसको जिम्मेवारी दे देता है और बाप निश्चिंत हो जाता है, उस प्रकार बाप दादा मुझे जिम्मेवारी दे रहे, बच्चे अभी परमधाम संभालो, मैं अभी भक्तों को भक्ति का फल देने जा रहा हूं। और बाप दादा भक्तों को फल देने नीचे जा रहे हैं धरती पर और मैं आत्मा परमधाम में हूं। मैं परमधाम में बाप दादा की सीट पर स्थित हूं और सारे विश्व को मैं त्रिकालदर्शी बन के देख रहा हूं। कल यह धरती कैसे स्वर्ग थी और आज क्या हो गई है, और फिर से ऐसे बनाने के लिए मैं आत्मा निमित्त हूं और मैं सभी सारी विश्व की आत्माओं में वो पावर भर रही हूं कि जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाए और जल्दी से जल्दी यह धरती स्वर्ग बन जाए। तो धरती में विशेष पांच फरिश्ते दिखाई दे रहे जो ये कार्य संपन्न कर रहे हैं। उसमें भी एक विशेष फरिश्ता जानकी दादी के रूप में दिखाई दे रहा है कि वो सब में बल भर रहा है और उसके इर्द गिर्द पांच फरिश्ते जैसे अमेरिका की मोहिनी बहन जी, वेदांती बहन जी अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया में निर्मला बहन जी, चक्रधारी बहन जी, संतोष बहन जी, ये सब विशेष फरिश्ते बन गए हैं और सारे विश्व में एकदम प्रकाश फैला रहे हैं और सब फरिश्ते बनकर सभी को उड़ा रहे हैं। जो भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे सब फरिश्ते बन गए हैं और सब आत्माओं को अनुभव करा रहे हैं कि सारे विश्व में शांति, शक्ति, पवित्रता की दुनिया आ रही है और अभी सबको बनना ही है। तो ऐसी विशेष लहर फैल गई है। और मैं पावर हाउस हूँ, परम धाम में बैठा और सब में ये पावर भर रहा हूँ और सभी आत्माएं एकदम संपन्न बन रही है और जल्द से जल्द यह दुनिया स्वर्ग की दुनिया बन रही है। और मैं आत्मा अब परमधाम से इस ओम शांति भवन में पहुंच रही हूं। ओम शांति।